تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت کے آغاز میں ہی یہ جملہ آ گیا الحمد. لکھئے ذرا الحمد. بس ابھی صرف اس پہ بات کرنی ہے ہم نے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اپنے نوٹس میں لکھئے کونے میں الحمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ حقیقت میں سوچ میں پڑ جاتا ہے. آپ عربی میں دیکھیں تو ایک لفظ ہے نا الحمد, لیکن اردو میں دیکھیں تو جملہ ہے. کیسے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لفظ حمد جو ہے نا عربی زبان میں, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے تعریف, پریزنگ, ٹو پریز, کسی کی تعریف آپ کرتے ہیں, اور دوسری ہے شکر, تھینک فل. کیا دو لفظ ہیں؟ کیا تعریف اور شکر. تو اس کے دو ترجمے ہم کریں گے, سارا شکر اللہ کا اور ساری تعریفیں اللہ کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعریف اور شکر دو مختلف لفظ ہیں؟ تو میں آپ کو اردو کا ہی جملہ بول کے سناتی ہوں. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, آپ نے اس کے گھر میں دیکھا ایک بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے, آپ کہتے ہیں بہت پیارا ہے یہ. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ تعریف کی ہے نا. اب اس میں تعریف تو ہے, مد کہہ لیں عربی میں, تھوڑا سا لفظ اپنے کانوں سے ٹکرائیں, مد کی آپ نے, لیکن شکر کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے برعکس بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں, کوئی آپ کی چیز ہے, کوئی نعمت, آپ کہتے ہیں شکر ہے. اب وہ شکر ہے تو کہہ رہے ہیں, لیکن اس چیز کی تعریف کوئی نہیں ہوتی. مثلاً اس کی مثال بھی قرآن میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے, انشکر لی ولی والدیا, کہ میں تیرا بھی شکر کرے. یعنی شکر کرنے کا لفظ آتا ہے نا, قرآن کی ایک آیت ہے کہ ماں باپ کی کا شکر گزار ہو جاؤ. اب عام میں اور آپ جب اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم شکر گزار بھی ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ دعا جو سورت لقمان میں سکھائی گئی, لقمان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم بولتے ہیں, تو کیا وہ اپنے باپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں؟ نہیں, کیونکہ باپ مشرک تھا. کیا پتہ چلا کہ شکر بول, اگر یہ لفظ ہوتا ہے شکر یا المد ہو, تو پھر اس میں وہ دونوں جذبے نہ ہوتے. حمد لفظ شکر اور تعریف کو جوڑ لیتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم ماں باپ کا شکر گزار تو اپنے رہنا ہے, مگر ان کی تعریف نہیں کرنی. فرعون نے احسان جتلایا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسان کی بات کی مگر تعریف نہیں کی. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ الحمد بولنا یہ کیوں ضروری تھا؟ اب یہ بڑا بڑا کر کے جملہ اپنے نوٹس میں لکھیے, اور نوٹس لیتے ہوئے بھی اس طرح لکھیں کہ بعد میں صرف وہ آپ کے سائنز ہی دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے فرق کیا تھا. ہم اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں. بات واضح ہے؟ الحمد, جس چیز کا شکر کیا اس کی تعریف بھی کی, جس وقت شکر کیا اسی وقت ساتھ ہی تعریف بھی کی. اچھا, اب جن کے نقطے نکلتے ہیں نا, وہ نقطہ نکال سکتے. کہتے ہیں یہاں ایسے کیوں نہ ہو جاتا المدح للہ یا شکر للہ, تو جواب لکھ لیں. اگر لفظ حمد کی جگہ مدح یا تعریف آتا تو دیکھنے میں ترجمہ سیم تھا, ساری تعریف اللہ کے لیے, لیکن شکر نہیں تھا, اور شکر آتا تو تعریف نہیں ہونی تھی. تیسری آپشن پھر کیا دیں گے آپ کسی کو, کہ پھر الحمد للہ کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک آیت ذرا بڑھا لیتے, کیا تھا المدح للہ و شکر للہ. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ دو الگ بول دیں, شکر اور تعریف جو ہے, تو شکر اور تعریف کو الگ کر دیں, تو وہ بھی ٹھیک کمبینیشن نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا ایک اصول ہے, جتنا جملہ مختصر ہوگا نا اتنا مدلل ہوگا. ایک بات, یعنی کلا و دلہ نہ ہوتا, قلیل اور دلیل والا نہ ہوتا, بلکہ بہت لمبا جملہ ہو جاتا. اور ویسے بھی جو لوگ جملے بولتے ہیں نا اس طرح کے, لمبی لمبی باتیں, لوگ اس کی باتیں کوئی نہیں سنتے. آپ کو میں ایک سائڈ کا پوائنٹ یا نوٹ کرا دوں, جو مائیں بہت بولتی ہیں اور ہر وقت بولتی ہیں نا, ان کے بچے پھر ان کی بولی ہوئی باتوں کو بھی قبول نہیں کرتے. جو ماں آنکھ کے اشارے سے بچے کو بات سمجھا دیتی ہے نا, پھر وہ بچہ جو ہے نا اپنی ماں کے اشارے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے, اور جو سارا دن بولتی ہیں نا پھر وہ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا المدح للہ و شکر للہ کہنے میں توالت تھی, بات بوجھل پڑتی, ضرورت نہیں تھی. फिर एक और इसमें कमी आ सकती है जो आलिमाना बहस है, लेकिन आप भी माशाल्लाह इल्म वाले बन रहे हैं, और वो क्या है कि अगर लफ्ज़ यूं होता ना, अल मदहु लिल्ला वाओ बीच में आ जाती, तो वाओ की वजह से फिर मानी क्या बन जाना था? कभी अल्लाह की तारीफ है, कभी अल्लाह का शुक्र है। बात समझ आ रही है? हालांकि अलहमद कहने में हर वक्त तारीफ, हर वक्त शुक्र है। फिर एक और फर्क भी है, जब आप अलमदहु कहेंगे ना, तारीफ कहेंगे, तो उसमें नियत नहीं शामिल होती। बगैर नियत के भी हम बाज़ दफ़ा तारीफ करते हैं, मसलन खाने की तारीफ कर दी आपने, जबकि आपने इरादा नहीं किया था, बस आदतन मुंह से निकल गया खाना बहुत अच्छा था। लेकिन जब हमद कहते हैं ना, तो नियत शामिल होती है। और फिर सबसे बड़ी आखिरी बात कह दूं, तारीफ आप सिर्फ उस चीज़ की करते हैं जो आपको अच्छी लगती है, जबकि अलहमद हम तकलीफों बीमारियों में भी कहते हैं, हत्ता के दुखों में भी कहते हैं। इतनी बात वाज़े, खुलासा क्या निकला? बेस्ट कॉम्बिनेशन अलहमद ही था। ठीक है, अगले लफ्ज पे चलते हैं, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अब अल्लाह के लिए तारीफ है, लिल्लाह ली वास्ते, अल्लाह अल्लाह, तो मानी पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र और तारीफें अल्लाह के लिए। फिर यहाँ एक सवाल उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत लंबा जुमला है, तो दो लफ्ज़ों में इसको करने के बजाय एक तो उसमें क्यों ना कह दिया जाता है लिल्लाहिल्हम्द, जैसे तकबीरात में भी आती है ना लिल्लाहिल्हम्द, तो फिर लिल्लाहिल्हम्द में क्या मानी होता? सिर्फ का मानी ना आता, यानी तारीफ अल्लाह के लिए है, लेकिन अल कह के सारी तारीफें कह दी। अगर लिल्लाहिल्हम्द इधर होता ना, तो मानी क्या था कि तारीफ अल्लाह के लिए भी है, कुछ बुतों की भी हो गई, कुछ दूसरी चीज़ों की भी हो गई। आप देखें सिर्फ अल्फाज के उस वक्त इस्तेमाल करने में मानी कितने बदल रहे हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि नबी सल्लम जब फतेह मक्का के मौके पे बुत तोड़ रहे थे ना, तो आपने उस वक्त लिल्लाहिल्हम्द कहा था। सूरत जासिया में भी आपको लिल्लाहिल्हम्द पड़ेगा, क्योंकि मक्की दौर था और चारों तरफ उनके बुत पड़े हुए थे। तो अल्लाह सुबहान ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ही कहकर आपको मुझे ये सिखा दिया, जब तक तुम पूरे दिल से सिर्फ अल्लाह की तारीफ नहीं करते और उसका शुक्र नहीं करते, तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ ही नहीं सकता। बस कहते हैं अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह कहा था तो सरा इन्ना लगा लिया जाता, इन्नल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता है खुतबा शुरू करते वक्त इमाम साहब जो खुतबा पढ़ते हैं उसमें से इन अल्हम्दुलिल्लाह ही, हाँ तो इन्ना क्यों नहीं लगा दिया? इसमें फिर बहुत लंबी बातें हैं, यानी अब आपको मैं ये सारी आज सुना दूंगी ना तो आप परेशान होंगे। इसमें ग्रामर की बारीकियाँ, इसमें कहीं लफ्ज़ों के हेर फेर हैं। इन्ना जब आता है तो अरबी में जुमला बन जाएगा, ये अलहमद में जुमला नहीं है अरबी का, मैंने आपको भी बोला ना, इन्नल हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो ये एक पूरा जुमला होगा। और जुमले की अरबी में दो किस्में होती हैं, या उसमें कोई खबर होती है, अक्सर जुमले में खबर ही होती है ना, बारिश हो रही है तो खबर हो गई, ऐसे जुमले को खबरी कहते हैं जुमला, या फिर इंशाई होता है जिसमें खबर तो नहीं होती लेकिन एहसास मौजूद होता है। अगर इससे पहले इन्ना लग जाता, बस इतना तो लिख लें कि अगर एक इन्ना लग जाता तो फिर हम खबर तो दे रहे हैं कि अल्लाह के लिए तारीफें हैं, पर ये जरूरी नहीं कि हम कर भी रहे हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं नमाज का वक्त हो गया, तो अब आपने बता दिया दूसरों को नमाज का वक्त हो गया, लेकिन कोई पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं। लेकिन आप जब खुद कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली है या मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा मामला हो जाएगा। फितरत की पुकार है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और याद रखिए, एक बच्चा यही पैगाम लेकर दुनिया में आता है और बाद में फिर ये पैगाम उसको याद रहे या ना रहे, ये उनके माँ बाप के हाथ में। बस एक दो मुझे और बात करने की इजाज़त दें, फिर आगे चलती हूँ। और वो क्या है? अल्हम्द कह दिया ना, जिनको थोड़ी सी ग्रामर कभी कहीं पढ़ी हो उनको पता है अल्हम्द क्या है, बोल दें जिसको पता है। इसमें ना अल लगा हुआ है, अलहमद की जगह ये क्यों नहीं कह दिया नहमदु, हम तारीफ करते हैं, जैसे उर्दू में तर्जमा है। देखिए मैं आपको जो फर्क समझाना चाह रही हूँ, मान लीजिए ये अल्लाह का कलाम है, आपको पता है कि आज के दौर में कई लोग सिर्फ अरबी जुबान की फसाहत देख देख कर इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं, और ये रब का कलाम है। हदीस पढ़ते हुए आपको वो नहीं फील होगा जो कुरान पे है। जब सीधी सी बात है, आप में जो नए लोग हैं वो परेशान ना हो, बस इतना समझे। जब तर्जमे में जो मैं अपनी तरफ से इजाफे लगाती हूँ, बस आप देखिए, जब घर जाके आप तर्जमा याद करेंगे ना, तो अल कमानी तमाम, हमद कमानी तारीफ। हाँ, लेकिन आप जब इसका तर्जमा याद करते हैं तो आप क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका दिमाग आपसे पूछेगा के लिए किधर है? नहीं समझ आई बात? कुछ लफ्ज आपको जरूरी ऐड करने पड़ेंगे बात को समझने के लिए। तो यही इस वक्त आपसे पूछ रही हूं कि अल्हम्दु की बजाय अरबी में भी एक जुमला ही होता, नहमदु, हम तारीफ करते हैं उसकी, या अहमदु, मैं तारीफ करता हूं। अहमदु कहेंगे तो मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, नाहमदु हम सारे करते हैं। जैसे आगे इसी सूरत में आ रहा है, इयाका नाबुदु, हम सब इबादत करते हैं। वहां जो कह दिया नाबुदुक, वहां तो नहीं कह दिया क्या इबादतु, जैसे अलहमद है। बात समझ गए? नस्ताइन वहां आ रहा है, तो यहां भी कह दिया जाता अहमदु नाहमदु, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? इसके भी आप जरा थोड़े से शुबे लिखिए, क्यों नहीं कहा अल्लाह ने? पहली बात देखिए कि इसम जो होता है ना, नाउन, उसमें जमाना नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता। मतलब कुर्सी, मेज, ये तो बचपन का सबक है ना, सबको ही आता है, इसम फेल और हर्फ। इसी तरह से आप देखिए कि अलहम्द इसम है, अगर इसको हम नहमदु और अहमदु में करते ना, तो वो फेल बन जाना था, ऐसे है ना? और जो फेल होता है ना, फेल नहीं फेल, उसमें जमाना होता है, ताल्लुक होता है। दूसरी बात है करने वाला चाहिए, तीन चीजों पे पूरी ग्रामर घूमती है, लिख लें, ये आपकी ग्रामर साथ साथ चल रही है। फेल, फाइल, मफूल। फेल को क्या कहते हैं बोलिए, इंग्लिश में या आप नोश में, जिसमें बोलना चाहें, वर्ब। फाइल को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। और मफूल किसको कहते हैं? सब्जेक्टिव को। भी सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको कहती हूं किसी के बारे में के सईदा खाना पका रही है, सईदा चावल पका रही है। देखिए इस जुमले को लिखकर, सईदा कौन है? पकाने वाली, फाइल। चावल क्या है? मफूल, जो पक रहे हैं, तो पकाने का काम कह के वो फेल है। तो एक वर्ब जहां होता है, जहां फेल होता है ना, उसमें दो लोग लाजमी है। अगर इधर अहमद और नाहमद होता तो फिर तर्जमा पता क्या बनना था, कि तारीफ अल्लाह की है लेकिन शर्त है कि कोई करने वाला हो और कोई जमाने का ताल्लुक हो। मैं हूं तो तारीफ कर रही हूं, मैं ना रही तो तारीफ ही कोई नहीं होनी। और दूसरी बात है, आज कर रही हूं कल नहीं करूंगी। आपको पता है कि फिर फेल की दो किस्में होती हैं, फेले माजी और फेले मुदारे। और इंग्लिश में कितनी होती हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अरबी में बस दो ही होती हैं, मुजारे और माजी। बात समझ गए? तो फिर मानी महदूद हो जाते हैं। फिर क्या मतलब था कि जमाने से ताल्लुक है, या तारीफ थी या है या होगी। दूसरा ये कि करने वाला है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह में क्या मानी मिला? हम्द को, ये जुमला लिख लें तो सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। अल्हम्द को ना तो मेरी जरूरत है कि मैं करूं, और ना वक्त और जमाने की कैद है। और अगर आपने इस अल्हम्दुलिल्लाह को सुनना है ना, तो कभी पहाड़ों में जाकर देखें, वीरानों में जो आपको खूबसूरतियां भी दिखती हैं और पत्तों की सरसराहट दिखती है ना, तो वहां आप कहते हैं ये पत्ते भी अल्लाह की तारीफें करते हैं। हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। चले एक और मुझे इजाजत दें, फिर इसके बाद हम पे नहीं बात करूंगी, अल्लाह पे करूंगी इंशाल्लाह। ये क्यों नहीं कह दिया गया कि अहमदुल्लाह, अल्लाह की तारीफ करो, अमर, इंटेरोगेटिव, फेले अमर क्यों नहीं? हुक्म अल्लाह कहता, पहला हुक्म कुरान का होता, और हम जैसे सख्ती करने वाले दीनदारों का होता ना, हम कहते करो, जैसे माँ बच्चे के कान पकड़ दी, उठो। देखिए अब आप मेरी इस बात से जरा सा पेरेंटिंग सीखे, ये मेरे से आप बर्दाश्त कीजिएगा कि मेरे स्टाइल में ही पेरेंटिंग है। मैं आपको तफसीर पढ़ा दूं, हदीस पढ़ा दूं, मैं आपको जनाजे के मसाइल पढ़ाऊं, मैंने उसमें आपको कोई ना कोई पेरेंटिंग टिप जरूर देनी है। ये मेरी मजबूरी है, क्यों? कि मुझे ये पता है कि हर हमारी शख्सियत जो बनती है, बिगड़ती है ना, उसमें माँ का ही हाथ होता है। आप कहते हैं उठो, सुबह उठ के कितने बच्चों, कितनी माएँ हैं जो बच्चों को उठाती हैं? मेरा हाल है 99% माएँ बच्चों को उठाती हैं ना। आज से आप नोट कीजिएगा, कल आप बच्चे को जब उठाएं ना, क्या जुमला होता है, उठो खाओ इधर आओ बैठो सुनो, ये सारे हुक्म बोलती हैं आप, ये सही तरीका नहीं होता। आप अगर कहते ना अहमदू, तो कह रहे मत आप, अल्लाह ताला आपको हुक्म दे, और मैं आप दे ना दे, अल्लाह तो दे सकता है ना, फिर अल्लाह मालिक कह देता, फर्ज है करो मेरी तारीफ अहमदुल्लाह, तो फिर शर्त क्या थी? हुक्म जब भी आप देते हैं दो में से एक बात होगी, कोई मान ले या ना माने। आपने कहा बेटा उठो, बेटा उठ गया, बेटा ना उठे, बात समझ गए? तो अहमदुल्लाह होता तो इसमें अल्लाह की, अल्लाह का नक्स था कि अल्लाह ने हुक्म दिया, कुछ ने उठ के तारीफ कर दी, कुछ ने ना की। और दूसरी बात यह है कि अब अल्लाह की तारीफ का दारोमदार अल्लाह पे नहीं रहा, मानने वाले पे आ गया, बात समझ गए? बच्चे को कहते कमरा साफ करो, बच्चे ने कर दिया तो बच्चे की मर्जी, बच्चे ने नहीं किया तो उसकी मर्जी, तो अहमदू कह देंगे, तो फिर ये हो गया कि कुछ ने हुक्म मान के तारीफ कर दी, कुछ ने ना मानी, तो आप क्या कहते हैं? मैं हार गई, गेव अप, हैंड्स अप, मैंने अपने हाथ उठा लिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से खूबसूरत तरकीब आ ही नहीं सकती थी। चलिए लफ्ज़ अल्लाह पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप देखिए कि इस लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, इसको देखिए कभी भी अल्लाह ना कहिएगा। बाद लोग कहते हैं अल्लाह को मोटा पढ़ो, अल्लाह को बारीक पढ़ो, यानी हमारी जुबान का झोर ही नहीं है तो बुरी नहीं होती, लेकिन हम हमेशा लफ्ज़ जब भी कुरान पाक में पढ़ेंगे, और मैंने आपको कल लिखाया था लेहा का लफ्ज़ 1700 कितनी दफ़ा, यानी ये बाद में फिर लिखा दूंगी देख के डबल चेक करके कि ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा आता है, जब भी कुरान में अल्लाह के बारे में लफ्ज़ अल्लाह बोलेंगे ना, बोलें लफ्ज़ अल्लाह या इसमें अल्लाह, ठीक है? लफ्ज़ अल्लाह का क्या मानी है? देखिए आप और मैं कलमे से लेकर कुरान के अंदर हर जगह पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आयत करीमे में हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, सुबह शाम की दुआओं में ये है वो है, हम लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन लफ्ज़ इलाह में क्या क्या छुपा हुआ है, आठ चीज़ें आपको बताऊंगी, सिर्फ सुन लें, नहीं समझ आता तो जाने दें, जिनको नहीं समझ आ रहा वो छोड़ दें, बस वो ये मान ले कि मैं हार गई, और अगर आ जाता समझ तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो लफ्ज़ इलाह में मैं पूरी आपको डिक्शनरी के लफ्ज़ों पे जाने के बजाय, अल्लाह वो है जिससे दिलों को तस्कीन मिलती है, यानी सुकून देने वाली हस्ती को अल्लाह कहते हैं। सूरत राद आयत 27:8 में आप पढ़ेंगे अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब, खूब याद रखो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो कोई कहते हैं अल्लाह कौन है? आपके बेचैन दिलों को सुकून देने वाला, मुस्तर को करार देने वाला। दूसरा मानी होता है इलाह का वारफ्तगी, बेखुदी, बेबसी हो गए आप, तखय्युर, दरमंदगी, यानी एक बंदा अल्लाह पे निछावरी हो रहा है, इलाह वो हस्ती जिसपे आप निछावर हो जाए। फिर इसी तरह इलाह से मुराद होता है बुलंद शान वाला, अल्लाह वो जात है जो मादे से यानी जमान और मकान के अहाते और अकल के फहम से ऊंचा है, जिसको आप कह लें कि अल्लाह वो हस्ती है जो दिल दिमाग में नहीं समाता। वो एक शेर भी है ना किसी का कि जो कहीं ना समाए वो मेरे दिल में कैसे आए, यानी अल्लाह फहम से ऊंचा, सोच से ऊंचा, दिमाग से ऊंचा। फिर इसी तरह इलाह लफ्ज़ के अंदर एक तरकीब है पोशीदा और छुपा हुआ, अल्लाह वो ज़ात है जो इंसान की अक़ल से छुपी हुई है। आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान पाक में आगे जाकर, सूरत अल आराफ है, मुझे भूल ना रहे, अगर अलाफ नहीं है तो अनफाल ज़रूर होगी, कि फरमाया कि वो आंखों से छुपा हुआ है, तुम उसको नहीं देख सकते लेकिन वो तुम्हें देखता है। फिर इसी तरह से अरब लोग कहते हैं, आप ज़रा सुनिएगा, इलाहल फसील, ऊंटनी का बच्चा जब बिछड़ने के बाद माँ को मिलता है, ये बड़ा प्यारा तर्जुमा है, तो वो माँ से चिमट जाता है, इसी तरह अल्लाह वो हस्ती है कि आफतों और मुसीबतों में इंसान इसकी जानिब लपकता है और जाके उससे चिमट जाता है। सच बताएं कि एथियस लोग भी तकलीफ में क्यों कहते हैं हाय गॉश, ओ गॉड, किधर से आता है वो गॉड? فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ تکلیفوں میں وہی آپ کو فائدہ دے گا. پھر اسی طرح سے الہ سمیع، الہ سمیع کے وزن پر بھی بنتا ہے. عربی میں کہتے ہیں الہ لا فلان، اس سے ڈرتا رہا، تو مراد کیا ہے کہ الہ وہ جس کی پناہ ڈھونڈی جائے. اللہ وہ ہے جو خوف و حراس کے وقت بندوں کی پناہ ہے. تمام عالم اور تمام مخلوقات اس کی حفاظت میں ایک خطرے سے محفوظ ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے جو الہ کا لفظ ہے نا، یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، حیران کر دینے والا. اللہ کی ذات اس طرح کی الہ ہے، قاضی الحاجات کہہ لیجئے، اور انسان کو تھامنے والا. ہر لحاظ سے وہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہہ دیا. اب اس الحمدللہ میں لفظ اللہ جو ہے یہ آ گیا. تھوڑا سا آگے پڑھیں گے، پھر پیچھے آنا پڑے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا. رب لفظ پہ چلتے ہیں، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. آپ ذرا اس لفظ کو سکپ کر دیں، آپ بالکل اپنے پارے پہ دیکھیے. میں پڑھتی ہوں، بالفرض یہ ایسے ہوتا، الحمد لرب العالمین. اللہ کے لفظ کو نکال دیں بیچ میں سے، تو کیا معنی بنتے اس کے؟ بات واضح، لفظ الہ کو نکال دیں گے نا تو رب کے اوپر ڈائریکٹ بات جائے گی. تو پھر غلطی پتہ کیا ہونی تھی، ہر مذہب والے نے جس کو رب سمجھا کہنا تھا اس کی تعریف ہو رہی ہے. مثلا اگر سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد رب العالمین، تو کرسچن سے کہنا تھا دیکھو دیکھو اس کا معنی کیا، پریز ٹو گاڈ اینڈ گاڈ از جیسس. وہ اپنے تصور سے عیسیٰ کی تعریف کرنے لگ جاتے. لیکن یہاں انگلش کا ترجمہ بنے تو کیا بنتا ہے، پریز ٹو اللہ دا گاڈ. لفظ اللہ کو ڈال کر نصارہ کی غلط فہمی دور کر دی کہ وہ تمہارا خدا وہ عیسیٰ نہیں جس کو تم سمجھتے ہو، بلکہ اصل اللہ. آپ میں جو پڑھ چکے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، پھر جادوگر مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، آمنا برب العالمین. اتنا کہہ کے نہیں، رب موسیٰ و ہارون. یاد ہے آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہتے نا آمنا برب العالمین، تو فرعون کے اندر ہوا بھرنی تھی، کہنا دیکھو میری تعریفیں کریں، کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم العالمین، انا ربکم الاعلا. بات سمجھ گئے؟ تو وہاں موسیٰ اور ہارون کے رب کا استثناء کیا گیا، ایگزام کیا گیا، تاکہ فرعون نہ غلطی کھا جائے. تو یہاں اگر لفظ اللہ کو اب سکپ کر دیں تو پھر مکہ والوں نے کہنا تھا یہ ہمارے لات منات کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ان کو رب کہتے تھے. اور رب لفظ کی ابھی میں آپ کو چھ کیفیات لکھاتی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کامن لفظ ہے. عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں. سورت یوسف میں آپ نے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ سنا، جن لوگوں نے پہلے سن چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمد کے بعد اللہ کے لفظ کی لازمی ضرورت تھی، ادر وائز معنی پورا نہیں ہونا تھا. چلیے اب اللہ کے لفظ پر مزید بات. لوگ جو بحث کرتے ہیں نا، جن کو بہت ہی وہ عادت ہوتی ہے، وہ قریت تو کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی الحمد للہ رب العالمین جو کا ہے، تو ذرا سا اللہ ہم سے بھی مشورہ لے لیتا تو کیا کہہ دیتا، الحمد للخالقی رب العالمین. اللہ کے 99 نیمز تو سب کو یاد ہوتے ہیں نا، وہ لگ جاتے، الحمد للمالک للقدوس، کچھ بھی کر دیتا، اللہ کا لفظ نکال دیا جاتا تو کیا ہوتا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، سب کا ساتھ پیئر ہے، مطلب خالق مخلوق، عابد معبود، رازق مرزوق. لفظ الہ کا کوئی بھی ساتھ پیئر نہیں ہے. یہ لکھیے یہ بات، یہ مجھے تیسے لگ رہا ہے میں آپ کو اسماء الحسنی کورس کروا رہی ہوں. یہ اسی کی کچھ چیزیں جو ذہن میں تھیں، کچی پکی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ اللہ کے ناموں پہ غور. آپ کو پتا ہے کہ احسن العلوم میں سے، یہ جو آپ قرآن تفسیر کا کورس کر رہے ہیں نا، اللہ کرے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ برکت دے دے، اس میں بھی جہاں لفظ آئے گا اللہ، میں کوشش کروں گی اسی کے اندر ہی آپ کو اسماء صفات کا کورس کروا دوں. اصل اس وقت امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو نماز کی بات کو، سود سے روکو، شراب سے روکو، پردے کی باتیں کرو، حجاب کی باتیں کرو، یہ کچا پکا علم سب تک پہنچ چکا ہے. توفیق نہیں ہے مانگنے کی، ماننے کی توفیق نہیں ہے. وجہ اللہ کے نام اور صفات نہیں. تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم پوری کوشش کریں گے، جو اللہ نے چاہا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ بات کریں. آپ کہتے ہیں ان باریکیوں میں کیوں ہمیں لے کے جا رہے ہیں، मैं इसलिए लेके जा रही हूं कि इसके बाद आपका शरह सदर होगा कि बल हुआ कलाम अल्लाह, और आपको इन चीज़ों से वो बात याद आनी चाहिए जो मैंने बिस्मिल्लाह की तफसीर में बताई थी कि इब्ने मुकफ़ा क्यों कुरान के वजन पे एक आयत नहीं ला सका। ये अल्लाह का कलाम है जिसको आज मैं और आप लेके बैठे, आपको अपने ऊपर मान भी होना चाहिए कि अल्लाह जी मुझे आपने इतनी प्यारी किताब पढ़ने का मौका दिया। मैंने तो पता नहीं कोई साइंस की किताब पकड़नी थी, नोश की पकड़नी थी, वो बाद में पकड़ूंगी, पहले मैं ये देख लूं ये सब ने क्या कुछ किया है। और ये भी बात याद रखिएगा, आज के दौर में मुसलमान नस्लों पर यही हरबा है कि पकड़ो इनको, जरा दूर कर दो अपने रब से। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पे बात हो गई, अब चलते हैं लफ्ज रब पे। रब, रौ बाबा, रब लफ्ज जो होता है ना, कॉमन लफ्ज है, इसको उर्दू में कहते हैं परवरदिगार, जो असल में फारसी लफ्ज है ना, परवरदिगार, पालने वाला, जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला। लफ्ज रब के अंदर पांच सिफात हैं अल्लाह की, यानी आप लिखिए अल्लाह सुबहान तआला की सिफत रबूबियत के पांच मुख्तलिफ रंग हैं। लिखिए, नंबर एक मालिक, आप इसकी जगह बेशक आगे छोड़ दें, नीचे दूसरा लिखिए सैयद, तीसरा है मुनिम, चौथा है मुरब्बी, और पांचवा है कय्यम। यानी रब कौन है? रब हुवल मालिक व सैयद वल मुनिम वल मुरब्बी वल कय्यम। अब कहेंगे ये तो और ही मुश्किल हो गई भाई, रब भी ठीक था है, दो लफ्ज थे, इन्होंने तो मुश्किल में डाल। पहले तो आप शुक्र करें कि आपको लफ्ज रब का ही लफ्जी तर्जमा याद करना पड़ता है, पड़े अगर पूरा कुरान है ये, अगर इसको खोला जाता ना, आप जरा अपने फिर आयत छोड़ दीजिए, मैंने आपको पहले ही अर्ज की जो लफ्ज छूटे उसको छोड़े, अभी इन सबकी वजाहत होनी है, ये बड़ी दफा बोलने हैं मैंने। देखिए आप पहले तो खुश हों किस बात पे, वापस चले अपने पारे पे, क्या आयत है जिसको आपने कल याद करके सुनाना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के लफ्ज तक तो हम मान गए कि भाई ऐसे ही होना चाहिए था, अगर खालिक मालिक होता तो आपको कितने और लफ्ज नहीं याद करने पड़ते। लेकिन अगर आप रब लफ्ज को स्किप कराएं तो ये आयत पता कितनी लंबी होनी थी, जरा पढ़िए। सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रही, आपको शुक्र दिला रही हूं कि लफ्ज रब को याद कर लें। ये आयत क्या है असल में? अल्हम्दुलिल्लाहि वल मालिकु सैयदुल मुनिम वल मुरब्बी वल कय्यम, तर्जमा याद करके आए कल तो अब दिल से निकला ना अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस कलाम का मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ जिंदगियां खपा दें आप इसको लेने में, आप फिर भी नहीं कह सकते मैं ले चुका या दे चुका। ये एक वो समंदर नहीं है, असल में ये कुआं है, जितना पानी कुएं का निकाल दें खाली हो जाता है शाम को कुआं, आपको शायद पता होगा, ढक के छोड़ देते हैं, कहते हैं आप कोई पानी, नो मोर वाटर, चले जाओ। अगले दिन सुबह के ढक्कन उठाते हैं ना तो फिर नीचे से पानी रिस रिस के वो कुआं फिर भरा होता है, फिर उसको भी पी लो ले लो, अगले जितना निकाले नीचे जाते जाए उतना मीठा पानी होता है। तो इल्म की मिठास किसने, अभी तो हम सतही है, 1-1.5 साल में तो आप बस अभी ऊपर ऊपर हैं, जब आप जितना गहराइयों में जाते जाएंगे फिर आपको समझ आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको अल्लाह ताला की इन सिफात जो लफ्ज़ रब के अंदर छुपी हुई है, जैसे इलाह की बताई अब रब की लिख लें। लफ्ज़ मालिक, अल मालिक, जिसका किसी चीज पर पूरी तरह कंट्रोल हो, इख्तियार हो। जैसे आप देखिए कि आप गाड़ी के मालिक हैं ना, कार ओनर, मगर आप इसको सड़क पर चलाने पर कादिर नहीं है अपनी मर्जी से, गाड़ी आपकी है, आपका कभी दिल करता है मैं राइट से लेफ्ट पे जाऊं, लेफ्ट से राइट पे नहीं जाऊं, लेकिन आप नहीं चला सकते। तो दुनिया में जो मलकियत है वो कम है, और इसी सूरत में आगे लफ्ज आप भी रहे मालिक यौम दीन, जो उसकी भी तफसीर है साथ ही। मालिक कौन है? जिसका किसी चीज पर पूरा कंट्रोल हो, यानी अल्लाह ताला इज नॉट ओनली द ओनर बल्कि उसका इख्तियार भी है, सुबह को शाम में बदले, कहीं रातें लंबी कर दे कहीं छोटी कर दे, कहीं दुनिया में बर्फ पड़ रही है तो कहीं लोग गर्मी से मर रहे हैं, उसकी मर्जी है। घर के आप मालिक हैं लेकिन आपका घर में पूरा इख्तियार नहीं है, ठीक है। सैयद लफ्ज दूसरा है, सैयद, सैयद के अंदर सरदारी का मानी आता है, यानी अल्लाह सुबहान तला इज सरदार नहीं कहना चाहिए हमें असल में अल्लाह तला के लिए, लेकिन आप कह लीजिए कि हमें चलाने वाला जिसको सब सुनते हैं। फिर मुनिम, मुनिम क्या होता है? तोहफे देने वाला, इनाम, इसी सूरत में आप पढ़ेंगे आगे, अनमत अलैहिम, तोहफा देने वाला। देखिए एक लफ्ज होता है तोहफा, लिखिए अपने पास, कोई कहता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया, तोहफा, गिफ्ट, प्रेजेंट, गावे, गावा, गावे क्या कहते हैं आप, कहते हैं इंग्लिश में गावा किसको कहते हैं? अमरूद को कहते हैं, आप यहाँ गावे गावे शुरू से कहते थे, मैं कहती थी पता नहीं कहाँ गावे गावे लाए हैं जी, किधर है, मैं तो खुश होगी अमरूद आए हैं, बाद में देखा वो गिफ्ट का डब्बा होगा कोई है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, दोनों ठीक हैं। एक लफ्ज़ होता है अजर, किसी को अजर देना, और एक है तोहफा देना। बस किसी को पे चेक मिलता है पूरा महीना काम करके, पे चेक है, इट्स फाइन, मैंने मेहनत की मुझे मिल गया, वो खुशी तो नहीं होगी जो कोई आपको इनाम दे। एक होता है गिफ्ट, एक होता है इनाम, दोनों में भी फर्क है। तोहफा आप किसी ऐसे को भी दे आते हैं जिसको आपका दिल नहीं करता शक्ल भी देखे, पर क्या करें अब उनके घर शादी है, अब देनी है, वो भी देके गए थे। तोहफे तो ऐसे ही बगैर जिस बात के भी हम दे देते हैं, रस्में रस्मन तोहफे देते हैं, लेकिन इनाम किसको देते हैं? आई एम प्लीज्ड, मैं अपने इस बच्चे से खुश हूं बेटा, मैं आपको इनाम दूंगी। तो यहां अल्लाह ताला का लफ्ज अजर देने वाला नहीं, पे चेक नहीं देने वाला, मोनेम इनाम, वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है। तुम मेरे रास्ते में इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम मुझे इतना वक्त दे रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं तुम्हें इनाम आज से नवाजूंगा। फिर उसके बाद देखिए मोरबी, मोरबी ये लफ्ज में क्या छुपा हुआ है? रब। हाँ जी शाबाश, किसी चीज के पलने बढ़ने पर इख्तियार रखने वाला, परवरिश करने वाला, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, ख्याल रखने वाला, टेक केयरर। और कय्यम पांचवा मानी, बरकरार रखने वाला, जो बका के लिए जिम्मेदार हो, यानी अल्लाह सुभान ताला बंदे का मालिक भी है, उस पे कंट्रोल भी रखता है, उसको इनामात भी देता है, उसकी परवरिश भी करता है, और फिर उसकी नेमतों को बरकरार भी रखता है। कभी सोचा आपने कि लफ्ज रब के अंदर अल्लाह का इतना प्यार छुपा हुआ है? मेंटेन आप घर बना लेते हैं, मेंटेन नहीं करते, इसमें यह कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया भी और मेंटेन भी किया। अब जरा ये सारी सिफात अपने दिल पर लेकर फिर सोचें कि आप अपने रब के आगे खुद को क्या महसूस करते हैं। मेरा मालिक, मेरा ख्याल रखने वाला, मेरी बका का जिम्मेदार है। आप देखिए दुनिया में कभी एक नेमत होती है फिर बाद में नहीं रहती। बाज बच्चे सही पैदा होते हैं, साल दो बाद पता चलता है कि इनको बीमारियां हैंडीकैप हो जाते हैं। बाज बिल्कुल सही पैदा होते हैं, बाद में बीमार होते हैं। ये रब लफ्ज के अंदर छुपा हुआ है, जिसको जहां जहां चले। और यकीन करें अगर हम अल्लाह को अपना रब मान लेना, तो हमें ना तो कोई शिकायत का हक रहे, ना किसी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा रहे। क्या अल्लाह पर ये वाजिब है कि वो हमारे ये सारे काम करे? हमने क्या दिया? क्या हम अल्लाह को मजबूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने ये सब कुछ अपनी खुशी से अपने ऊपर लिए हैं। अच्छा, यहाँ लफ्ज रब के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात अब आपको सूरत के अगले हिस्से के बारे में पता चलनी है। अगर 2-3 मिनट और दे दें तो ये पूरा कर दूं लफ्ज रब का, ताकि आगे चले। रब लफ्ज है ना, इसका मुतजाद क्या है? मिसाल देती हूँ, थोड़ा सा अपने मेरे साथ चलें, सिर्फ लिखे नहीं सोचें। जैसे अभी कहा कि खालिक मखलूक, राजिक मरजूक, आबिद माबूद, तो लफ्ज रब के साथ बंदे की सिफत क्या आएगी? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप जिसको भी आता है। यानी रब का मुतजाद समझ आ गए वो क्या है? जी मैं फिर दोहराती हूँ, खालिक से मखलूक, राजिक से मरजूक, आबिद से माबूद। जी आप अब्द, रब का मुतजाद अब्द है। रब से आला लेबल कोई नहीं और अब्द से निचला लेबल कोई नहीं। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी या का नाबुदू में। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला के कुछ नाम है ना, उनके मुतजाद है, कुछ के नहीं होते। मसला आप देखिए उर्दू में आप बोलते हैं, इसको उर्दू में समझिए, बाप औलाद है, बाप के साथ ही ऑपोजिटली औलाद आएगा ना। उस्ताद का लफ्ज कोई बोले तो क्या जवाब में आएगा? शागिर्द। आजिर अजीर, इंप्लॉयर इंप्लॉयर और इंप्लॉय। रब के लफ्ज की शर्त है कि कोई फिर अब्द भी होगा। आप कह सकते हैं रब के बगैर अब्द नहीं और अब्द के बगैर रब नहीं। गोया के फातिहा के शुरू में अल्लाह ताला ने आपका मेरा ताल्लुक बता दिया। आप देखिए कि कोई कहता है इस आयत को ऐसे कर दें, जरा देखिएगा आप आयत को, अल्हम्दुलिल्लाह, रब के लफ्ज को स्किप कर दें, बस सिर्फ लिल्लाह की बात आ जाती। अगर लफ्ज अल्लाह होता इधर, सिर्फ रब ना होता, तो क्या फर्क होता? जैसे हमने लफ्ज अल्लाह को रिप्लेस करने की कोशिश की थी, तो फिर लिखें कि लफ्ज अल्लाह का कोई मुतजात नहीं है। जैसे रब के साथ अब्द है ना, लफ्ज अल्लाह के साथ बंदे का कोई ताल्लुक नहीं बनता। और सूरत फातिहा का तो मकसद ही बंदे और रब का ताल्लुक है। तो क्या समझ आ गई? हादी से मुख्तदी, देने वाला है तो कोई लेने वाला है, सिखाने वाला है तो कोई सीखने वाला है, खालिक है तो मखलूक है। ये सारे ताल्लुक तब होंगे जब अल्लाह के साथ हम रब और अब्द का ताल्लुक महसूस करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर सारे जहानों का आलिम, मालूमों का रब। और आगे आप देखेंगे कि ये है बंदा, मैं और आप बंदे हैं ना, और अल्लाह इतना कुछ है। दुनिया के जो गुलाम होते हैं, ये एम्प्लॉयज होते हैं ना, अमूमन वो अपने मालिकों को पसंद नहीं करते। जैसे आपको पता है आज भी अमेरिका में गुलामी हुकूमत में नहीं आ सकती, यानी कोई गुलाम शख्स जो है ना वो हुक्मरानी के दर्जे पे नहीं आ सकता। तारीख में बहुत दफ़ा गुलामी गुजरी, ख़ानदाने गुलामा का नाम आपने बरसगीर पाकोइन में सुना होगा ना, लोगों ने जुल्म किए। हर अब्द की ख्वाहिश होती है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, नफरत करते हैं अपने मालिकों से, हर वक्त आज़ाद बनना चाहते हैं। तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन रब के साथ अब्द का ताल्लुक है कि बंदा ना सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसकी तारीफ करता है, बल्कि रब्बिल आलमीन होकर कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने रब को नहीं छोड़। सॉरी, आपको याद है सीरत में पढ़ा था जैद बिन हारिसा के घर वाले जब लेने आ गए उनको ढूंढते हुए कि भाई हमारा बच्चा दे दो, खानदानी गुलाम नहीं थे, बस पकड़े हुए बिकते बिकाते आ गए। अल्लाह के नबी ने इख्तियार दे दिया कि जैद आप चाहें तो अपने माँ बाप और चचा के साथ चले जाएं। तो जैद ने क्या कहा था, आपको छोड़कर मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, कहा इसलिए जो खूबियां मैंने इस शख्स में देखी हैं वो तो मैंने आप में भी नहीं देखी। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक ऐसा बन जाता है, कहते हैं हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा रब काफी है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और आलमीन आलम की जमा, जमा मुजक्कर सालम है। अगर अरबी में देखें ना तो अल अवालिम इसकी जमा बनती है, तमाम जहानों का रब, आकिल गैर आकिल समझ वाले नहीं। तो उर्दू में भी हम बोलते हैं आलिम और आलम, फर्क इसका बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता। असल में हमने उर्दू को बहुत बिगाड़ दिया है। आप ये जो लफ्ज़ बोलते हैं ना वगैरह, किताबें वगैरह ले आओ, ये वगैरह लफ्ज़ आपको पता है असल में क्या था, वा गैरुहू। आप पढ़ के देखें हदीसों में ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा था, वा और गैरुहू, इसके सिवा और भी, तो हमने उसको कह रहा वगैरह। हमारी आदत है, हमने उर्दू में वो जहां अराब उतरे हमें किसी उस्ताद ने रोका ही नहीं, और आज मैंने पढ़ाने वालों को ऐसी गलतियां करते देखा है। असल लफ्ज है काफिरून, या अय्युहल काफिरून। हम उर्दू में क्या कहते हैं, ओ काफिरो। ये जो काफिरो लफ्ज है ना, ये काफिरून था, जब मानी एक ही है, लेकिन असल में हमें उर्दू में भी काफिरों को काफिर नहीं कहना, को काफिरो नहीं कहना, काफिरून। फिर इसी तरह से आप देखिए लफ्ज था मुस्लिमून, तो हम क्या कहते हैं, मुसलमो, मुसलमों को कह दिया। तो ये अरबी उर्दू से बहुत नाराज है कि ये आपने मेरा बहुत हाल हुलिया बदल दिया, बिगाड़ दिया है। तो आलम क्या होता है, डिफरेंट सेक्स कह लें, स्पीशीज कह लें, फरिश्तों का आलम, जहानों का, जिन्नों का, जैसे जापान एक आलम है और इसी तरह से ग्लोब है, कल्चर है, इसकी मुख्तलिफ सी चीजें हैं। लेकिन यहां आप कह लीजिए कि जहानों से मुराद असमावाती वाल अर्द है, तो फिर ये क्यों नहीं कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिस समावाती वल अर्थ। ये भी आप एक जुमला है, रब्बिल आलमीन क्यों कहा? तो उसके जवाब नोट करें कि सूरत फातिहा का मकसद हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है। आलमीन कहने से ताल्लुक कायम हो रहा है, समावाती वल अर्थ कहने से नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लगता है बेजान चीजों का रब। जैसे नबी सल्लम के लिए कुरान पाक में आप पढ़ेंगे, लियकून लिल आलमीन नजीरा, ताकि आप हो जाएं जहानों को डराने वाले। तो आलमीन में आपका मेरा जिक्र है, आसमानों जमीन होते तो बस ऐसे लगता बेजान चीजों का मालिक। इसी तरह से हजरत लूत ने अपनी कौम से कहा था, अलम नन्हकुम अनिल आलमीन, क्या तुम्हें जहानों में किसी ने इस चीज से मना नहीं किया था, या तुम ऐसे मामलात में क्यों पड़ गए हो? तो कहने का मतलब फिर क्या हुआ कि अल्लाह सुबहान तआला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर आपको मुझे सोचने की दावत दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक है। आप देखिए आज दुनिया में मुख्तलिफ ताल्लुक बनते हैं ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, किस नाम पे, मुल्कों के नाम पे हम अलग हैं। हमारी तो मस्जिदें भी कहते हैं ये बंगालियों की और ये सीरियंस की और ये पाकिस्तानियों की, गलत बांट है, ये तो सरासरी इस्लाम के खिलाफ है, खुवत को तो खत्म ही कर दिया। बात अब रंग और नस्ल की, काले और गोरे, जुबान इंग्लिश स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग है। अल्लाह ने आपको मुझे जिस कुंबे से जोड़ा है वो है अल आलमीन। अगर आप रब के साथ अब्द बनेंगे ना, तो बीच में से सारी तफरीकें निकाल कर अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ लें। تعلق نبھانے والے. اور آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے یہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ تم اگر زندگی میں کچھ کرو گے تو اس سے پیچھے پہلے تمہیں میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا. ایک آیت کی ابھی ہم نے, ابھی صرف خلاصہ ہی ہوا ہے, ابھی کہلے لفظی وضاحت ہوئی ہے, لیکن کیا آپ کو بے بسی نہیں فیل ہو رہی؟ اتنا کچھ ہے وہ میرے لیے. دیکھیے اس کے پیچھے میں اپنی طرف سے چند جملے بولوں. شکر. آپ کہتے ہیں میاں اچھا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں شوہر نہیں اچھا, ڈائیورس چاہیے. اگر آپ شوہر جو کام کرتے ہیں یا جو خیال ہمارا اس کو لکھنے لگے تو ہو سکتا ہے ایک صفحہ بھر جائے. اور یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ نہیں ہوتے, یا اللہ رحم کرے دنیا سے چلے جائیں, یا پھر آپ اس سے زیادہ ہی کچھ برے حالات میں پڑے. آپ کہتے ہیں نہ ہونے سے تو بہتر تھا. آج مثال دی ہے میں نے آپ کو صرف, جیسے بعض رشتوں کی میں قدر نہیں ہوتی نا. ماں باپ کل مثال لے لیجئے, بچے کہتے ہیں ماں نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے نہ صحیح. جب ماں دنیا سے جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کپڑے بھی دھوتی تھی, یہ تو کھانا بھی پکاتی تھی, یہ تو پھر پیار بھی کرتی تھی, پھر بھی آدھی رات تک دروازہ کھول کے بیٹھی رہتی تھی, آئے گا تو پھر بند کروں گی, آج کدھر گئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں استاد شاگرد, ہم کہتے استاد ہی ہے نا, بس کیا پڑھانا تھا انہوں نے, ان کو خود کیا آتا ہے, بس ٹھیک ہے تھینک یو, بہت شکریہ. لیکن جب استاد نہیں رہتے تو غلطیاں کر کر کے ہم کہتے ہیں ہائے کوئی ہے ہی نہیں جو غلطی نکالے. اسی طرح اللہ کے ساتھ ہم نے اوور ایسٹیمیشن کیا ہے, جسٹ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, یہ میرے دل کی پکار ہے. ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے جو گاڈ کو گوش کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. آپ کے اس ملک کا گورنمنٹ کا لا جو ہے وہ لا دینیت ہے, کرسچینٹی بھی نہیں ہے ادھر. اس میں میں اور آپ امت مسلمہ کے افراد, جتنے مسلمان آپ اور میں ادھر اسلوں میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی کوئی سنے گا وہاں ہے, کیا کبھی ہم نے اس ایک آیت پہ دل کی گہرائی سے شکر کیا کہ اللہ تو میرا رب بھی ہے, تو مالک بھی ہے, مربی بھی ہے, منعم بھی ہے, اور تو میرا سید بھی ہے, اور تو مجھے خوش بھی کرتا ہے, تو مجھے حیران بھی کرتا ہے, تو مجھے صرف دیتا نہیں میری زندگی کو مینٹین کرتا ہے, دان نکلتے ہیں پھر اگاتے ہیں, بال نکلتے ہیں پھر اگاتے ہیں, تو میرا سسٹینر بھی ہے, تو میرا مینٹینر بھی ہے. ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو فار گرانٹیڈ لیا. ایک ہی آئے تو یہ تلاوت سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.